ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दे वरं जड्डञ्जागुडरोचसंविदधतङ्गपट्टं वरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायं दामो तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विघ्नं राधे तं नय मां शरणं।
गुरु गौरांग की कृपा से आज हमारा चतुर्थ दिवस तो 28, 29, 30 आज 31 है चतुर्थ दिवस। सुष्ठु रूप से परिक्रमा हुई। इस परिक्रमा में आज हम लोग इमली तला में सबसे पहले हम लोग गए। इमली तला में गए। इमली तला का प्रसंग बोला गया वहां देशपो के अबाउट इमली तला है मुनि महाराज
इंग्लिश में बोले रसांत को हिंदी में।
इमली तला 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण की लीला की स्थली है। जब राधिका जी ने मान किया और गोपियों ने क्या किया सौभाग्यमत, तो कृष्ण वहीं से अंतर ध्यान हो गए। लोगों ने समझा जी अकेले कृष्ण, किंतु अकेले नहीं, पहले कृष्ण राधिका जी और पीछे से कृष्ण। तो श्रृंगार भट्ट में उनकी बेणी गुथी श्रृंगार किया और फिर वहीं पर बेणी गुत्ते गुत्ते और सब गोपियां आ गई, पक्ष स्वपक्ष सभी। कृष्ण ने कहा जल्दी चलो ना तो ये गोपियां देख लेंगी, तुम्हारे प्रति ईर्ष्या करेंगी। राधा जी ने कहा मैं चल नहीं सकती, जहां इच्छा हो लेकर चलो, हमारे कंधे पर बैठ जाओ। और ज्यों ही कृष्ण बैठे त्यों ही राधिका जी बैठने की चेष्टा की, त्यों ही अंतर ध्यान हो गए। कृष्ण तो वहां से अंतर ध्यान हो गए और इमली तला में वो वहीं पर इमली तला की वेदी पर बैठकर राधा चिंता निवेशे न जस कांतिर बिलोपिता श्री कृष्ण चरणम बंदे राधा लिंगित विग्रह। वहीं पर राधा जी की चिंता करने लग गए और उधर राधा जी की सहेलियां जब आई उनकी दशा देख करके रोती हुई देख करके मुछित हुई पड़ी देख करके उनको जगाया और फिर उनको लेकर के जमुना पुलिन में जाकर जय तिथि अधिकम कर करके कृष्ण को बुलाया। किंतु कृष्ण यहां उनके विरह में तप्त हैं। गौड़ीय वैष्णव का विशेष करके रूपानुग गौड़ीय वैष्णव ये चाहते हैं कृष्ण के विरह में राधा जी न तड़पे बल्कि राधा जी के विरह में कृष्ण विरहग्नि प्रतीत करे समझे। इसलिए गुरु जी ने राधा तत्ताष्टक में विनोद बिहारी अष्टकम में लिखा है राधा चिंता निवेशन। राधा की चिंता में वो ऐसे विभोर हो गए कि गौरवर्ण के हो गए। राधा जी का जो अंग था उसी प्रकार का गौरवर्ण हो गया। इसीलिए गुरु महाराज जी ने अपने समस्त मंदिरों में जहां भी मंदिर है गौड़ीय वेदांत समिति के सर्वत्र उन्होंने राधा कृष्ण की प्रतिष्ठा की जिसमें राधा जी जैसा ही अंग की कांति कृष्ण का भी दिखलाया गया है। एक बार हमने मथुरा में कुछ श्याम रंग कृष्ण को कर दिया कुछ नीला तो गुरु महाराज जी ने पूछा जी ऐसा क्यों किया क्यों किया। हमारे भाव को समझा नहीं जल्दी से इसको हटा करके मेरे भाव को समझो। हमने जो अभी तत्ताष्टकम अभी लिखा नहीं गया था इसके पहले की बात हमारी ये भावना है राधा जी की चिंता करते करते कृष्ण की अभी अंग कांति वैसे ही हो गई गौर रंग की। इसलिए इसमें उलट फेर नहीं करना चाहिए बस साथ ही साथ मैंने बुलाया जयपुर से और उसको ठीक किया। वहां से अभी सेवा कुंज में तुम लोग गया सेवा कुंज में गया
अनुराग के बिना प्रेम नहीं होता है और आश्रय जाती है क्या अनुराग गोपियों के अनुराग को भागवत में दिखाया गया और यहाँ पर कृष्ण के अनुराग गोपियों को दिखाया जा रहा है गोपियों में तो कृष्ण का अनुराग प्रधान माना जाएगा या गोपियों का अनुराग प्रधान माना जाएगा
गोपियों का कृष्ण का अनुराग प्रधान है क्योंकि हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है हमको आश्रय जाति से मतलब है वो कृष्ण विषय विग्रह उनका अनुराग है दिखला रहे हैं किंतु वो लेकर के हमें क्या होगा उसे मतलब क्या है
ना। राधा चिंता निवेशनम में यहाँ कृष्ण का अनुराग प्रधान दिखाया जा रहा है
नहीं राधा जी का अनुराग विशेष है इसलिए कृष्ण उसे आकृष्ट होकर के और तब उन्होंने की खैर वो अपने अपने स्थान पर सभी ठीक है। तो अभी रूपानु गौड़ीय वैष्णव लोग इसी को ग्रहण करते हैं और गुरु जी ने इसको स्पष्ट कर दिया इसके पहले कहीं भी कृष्ण का विग्रह गौरवर्ण नहीं था। अब उनकी देखा देखी सारे इस्कॉन में सारे जगह में और सब अब पृथ्वी में सब जगह गौर कृष्ण और गौर राधा जी का भी विग्रह
प्रतिष्ठा
और दूसरे दूसरे लोग हैं वो लोग ही कर रहे हैं। हमने देखा जो सनातन धर्मावलंबी अमेरिका में है कहाँ कहाँ है वो सब गौरवर्ण का सेवा कुंज में सेवा कुंज इसका नाम इसीलिए हुआ कि कृष्ण राधा जी की सेवा कर रहे हैं उनका वहां पर मान भंजन कर रहे हैं सेवा कुंज में, और संपूर्ण रूप से शरणागत होकर वहां पर चित्र भी ऐसा ही है, मान कर रही है, मान प्रसादन कर रही है। तो वहां पर मान प्रसादन का है, इसे सेवा कुंज ही एक ऐसा स्थान है सारे ब्रजमंडल में जहां पर कि कृष्ण राधा जी की सेवा कर रहे हैं। ललिता वहां पर ललिता कुंड है जहां पर कि रास स्थली में पिपासा लगने पर ललिता जी के लिए बेणी से खोदा और एक कुंड निकला, उसका सुशीतल जल ललिता जी को और सब सखियों को पिलाया, इसके बाद में फिर रास। और तो सब तुम लोगों ने वहां पर कहा होगा। इसके बाद हम लोग राधा श्याम सुंदर मंदिर में प्राण किशोर प्रभु किशोर कृष्ण कम हियर एंड स्पीक अबाउट राधा श्याम सुंदर, ही वांट्स टू स्पीक समथिंग। More louder.
His Diksha Guru was Srila Srila Chaitanya, who we know in Krishna Lila is a coward boy, and he had given Diksha to, at that time his name was Duki Krishna Das. Duki Krishna Das, he came in the shelter of Srila Jiva Goswami, and in Vrindavan, he came to know that he was actually in, as in Mandariva, his actual, his eternal swarup is a Mandari
Go on.
He was given the service to sweep Sri Seva Kunj, and on one occasion he found an ankle bell and he brought it to Srila Jiva Goswami, and Jiva Goswami said, oh, this is a very special ankle bell, you should only return it to the person who it belongs to. After some time, two very nice Kishori girls came to him and said, oh Baba, did you find anything in the Kunj? We are looking for an ankle of our Swami. And he said, well, I can only give directly to the person who it belongs to. And they said, well, we won't allow you to do that. Of course you can't do that. And they were arguing back and forth. And eventually they said, okay, we'll blindfold you. And you can go and you can put it on the leg of the Avar Swamini. And that person was, of course, Srimati Radhika herself. And by the mercy of Srimati Radhika, she actually touched his forehead and left a mark of that ankle bell on his forehead. That's some tilak is there in this, the followers of the Shaman. Sorry.
Anything more?
Yes, this is all I can tell you.
Hello!
You might extend the preparation at 1.5 seconds.
Thank you. সকলেই যে কি বলছিল যে সে কেউ প্রতিবাদ করেছিল। তারপরে কোথায় গেল? यहाँ पर शिक्षा गुरु का महत्व अधिक दिखलाया गया। अपने हृदय चैतन्य गुरु से, दीक्षा गुरु से भी जीव गोस्वामी के पास में आए, उनका आदेश लेकर के और उनसे श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, ये तीनों ने शिक्षा ग्रहण किया। इन तीनों के अलग अलग गुरु हैं। लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य नरोत्तम ठाकुर और गोपाल भट्ट के श्रीनिवास और श्यामानंद प्रभु के हृदय से तभी जी गोस्वामी इनको शिक्षा दिया। उन लोगों ने आदेश दिया कि हाँ जाओ उनसे शिक्षा प्राप्त करो। ये हमारी परंपरा रही। जी गोस्वामी और लोगों से तत्वविद थे, भक्ति रस में रूपानुग हैं, इसलिए कहीं कहीं शिक्षा गुरु का महत्व अधिक होता है जो शिष्यों को इस विषय में शिक्षा दे सकता है। इसलिए शिक्षा गुरु का अधिक आदर शास्त्र बहिर्भूत नहीं है, देना चाहिए कहीं यदि वैसा शिक्षा गुरु। जहां शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक ही हो तो वहां तो कोई कहना ही नहीं। इसके बाद में कहां गया? राधा दामोदर का तो सभी लोग जानते हैं। अब हम लोग उपदेशामृत का तीसरा श्लोक हो गया है, चौथा श्लोक सिंगार भट्ट में
ट्रांसलेशन,
वो तो बतलाया, बतलाई दिया जी। श्रृंगार भट्ट में अंतर ध्यान होकर के वहां पर प्रकट हुए और कृष्ण ने स्वयं उनका श्रृंगार किया और वहीं पर सब सखियां आई थी। पीछे से नित्यानंद भट्ट कहलाता है, वो नित्यानंद प्रभु जी वहीं पर आए थे, इसलिए नित्यानंद भट्ट कहते हैं। इसलिए वहां पर गौर नित्यानंद जी का विग्रह है, उनकी पूजा होती है। ओ यू हैव टू ट्रांसलेट समथिंग, বললো না
searching for Sri Krishna. They were coming near to that place
where Krishna was decorating Srimati Radhika. Krishna thought, if the other gopis see that I am alone with her, then they will have some jealousy towards her. This will not be good. So he encouraged Radhika to leave that place. But Radhika said, I am tired, I cannot take another step further. So Krishna said, I'll carry you, should get on my shoulder. Just when Radhika was about to get onto the shoulder of Sri Krishna, he disappeared. So at that time when he disappeared, he came to this place just behind us, Imritala. And he sat down on a vedi, on a platform beneath the tree. And feeling intense separation from Radhika, he became absorbed in her. In the meantime, the Sakis, they saw Radhika and her highest, astonishing separation mood. And then together, Radhika and all gopis, they came onto the bank of Jamuna and began to weep in separation. Jayati Tayadikam, Jamana Braja, all the verses that we know of Gopi Gita, we can find in Srimad Bhagavatam. So, those who are Gaudiya Vaishnava, who are Rupa Ruga, following the moves of Srila Rupa Goswami, they prefer not to see that Radhika should be suffering in separation from Sri Krishna. But they prefer that Krishna should feel separation from Srimati Radhika. Therefore, our Param Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, he has composed Radha Vinod Bihari Tatvastakam. In the first verse, he explained, Radha Chintani Veshena Yashikanti Vilopita Sri Krishna Tamam Vande Radha Alindita Vigraha. There, it's described that when Krishna was feeling separation from Srimati Radhika, he became so much absorbed in thoughts of her that his dark complexion went away and he manifested golden complexion, the same complexion as Srimati Radhika. So therefore, including the temples of Sri Gaudiya Vedanta Samiti, our Param Gurudev established Krishna, the deity of Krishna, with exactly the same complexion as Srimati Radhika.
Once in Mathura, someone gave a black beauty.
You don't need to
have someone gave the color.
So, once in Mathura, someone gave some color on the deity of Vinod Bihari, making him dark. The Param Gurudev said, oh, you don't understand my mood. This is prior to his composing this Radha Vinod Bihari Tatvastakam. So, before the time of our Param Gurudev, generally the Vigraha of Sri Krishna was of a dark complexion. But now, by the influence of Param Gurudev, in ISKCON and in other places all over the world, you can see that the deities of Krishna are being established with a fair complexion. After describing the glories of Imritala, Srila Gurudev described Seva Kunj. Seva Kunj. The Kunj means the Kunj, wherein Sri Krishna himself, he renders service to Srimati Radhika.
Why does
Sri Krishna serve Radhika? Of Man Prasadam, to pacify her mind, to pacify her sulky mood. In Seva Kunj, there is Lalita Kunj. This kunj was made by Sri Krishna because during Rasa Lila, Lalita Sakhi became thirsty. So Krishna made this kunj with his flute and quenched her thirst, and then Rasa Lila continued. So we've heard in brief something about the pastimes of Shyamananda Prabhu in connection with the temple of Radha Shyamasundara. So Gurudev commented that with the permission of his Diksha Guru, Hridaya Chaitanya, Sri Krishna Das, he took shelter of Srila Jiva Goswami. You see that Srila Jiva Goswami part, he knows all Tattva Siddhanta and he's very rasic. So, famous devotees, they took shelter of his lotus feet. Narottamdas Thakur, Srinivas Acharya, and Shyamananda Pandit. All three of his prominent Shiksha disciples were initiated by very qualified Diksha Gurus. Srila Narottam Das Thakur received Diksha from Lokanath Das Goswami. Srinivas Acharya, he had received Diksha from Sri Gopal Bhakta Goswami. And Sri Shamananda Panik had received Diksha from Sri Vidai Chaitanya. All of them, they took shelter of Jiva Goswami. So this shows that sometimes the glories of the Shikshi Guru, they excel even the glories of the Diksha Guru. Srinivas Bhakt was also known as Nityananda Bhakt, because when Sri Nityananda was doing parikrama of all the holy tirthas, he came here and was weeping in separation from Sri Krishna. And therefore, the deities of Sri Gaur Nithai have also been established in Sri Nityananda.
Bhakti Sar Maharaj, you should explain fourth slok. Apopdeshamritam.
Om Ajnana Timarandasya Jnananjana Shalakaya Chaksuramaratam Jena Tasmai Sri
Gurave Maha. Shubhadev ordered me to speak on the fourth verse of Shubhadeshamrita. Dadati Pranibhidati Guyamakyati Pruchati Bhumte Bhojayate Chaiva Sadhidam Priti Lakshanam. We've been hearing in the progression Yam Niyam, the do's and don'ts of bhakti, how we shouldn't have bad association, how we should give up bad association. These two things have been emphasized in a positive way and a negative way in verses 2 and 3. In verse 2, he said, Janasangas, you should, the association of worldly-minded people, jnanis, karmis, and gross, and bogis, tyagis, this will destroy your bhakti. And then he said in verse 3, sangha tyagat, give up the association of those people. So now, the question comes, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada describes in his anuvritti, his commentary. Then the question may come up, okay, if I have to give up all this bad association, how will I associate with the real bhaktas, the real devotees? So here, Rupa Goswami is lighting our path. Through these 11 verses, he will take us to the highest destination, the service of the divine couple in Radhakund. But we will have to go through all these stages. So now we've come to the fourth stage, the Dati Pranibhinati. The Dati means to give something, but not just give anything or to anyone. We should give things that are required by Uttam Mahabhagavat, or devotees more advanced for us, at least senior Madhyam devotees, what they require for their service. They don't require anything palatial or gorgeous or anything, but they may have some needs. And so we can see that any small way that we can make an offering to an advanced devotee, this will help our bhakti. And Pranibhinati means that we should receive their remnants, their prasad, any remnant may come to us from their servant of their cloth. These are very valuable items for accepting and enhancing our love. These six, these sattvidam kriti, these are the symptom, lakshanam of love. Then he says, bhumte bhava jayate chaiva. Similarly, one should only honor remnants of prasadam, which have been offered to the Lord and accepted by pure devotees. And similarly, one should offer such pure prasadam to devotees of advanced stature. Then, this means that one should hear the confidential realizations of the bhajan of advanced devotees. It's like we're so fortunate during this parikrama to hear so many wonderful realizations from Srila Gurudev's lotus lips about how we may enter into the mysteries of all of these bhajan stalis and beautiful places in the parikrama. So we're hearing these confidential topics, and we should inquire. We should inquire about these things. We should not be dull-headed and just in one ear and out the other, but we should meditate on what we have heard, and this should spur within us more desire to hear more and understand more. So Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, he is very strong in his purport. He spends most of his time in the purport to this verse warning that one should not do these six things with people, with non-devotees, with jnanis, with karmis, with jagis, with bogis, gross sense enjoyers, because if you do these six things with them, then there you'll develop an attachment or some affection for them, he says. And this affection will ruin your bhakti. And similarly, he quotes a verse from Chaitanya Charitamrita that by eating food prepared by materialists, one's mind will become polluted and affected by that, and then when the mind is disturbed, it cannot remember Krishna. So two things are there. The prohibitions, those things we shouldn't do, and they always have their opposite, what we should do. So these six exchanges of love should be shared with pure devotees, not with materialists.
সুন্দর গোপাল কিছু বলতে পারল না
তো চতুর্থ শ্লোক কা সার ইনহোনে বতলাযা দদাতি প্রতিগ্রহণাতি শুদ্ধ বৈষ্ণব কো হি উনকি আবশ্যকতা কে অনুসার মে কুছ দেনা और वो कृपा करके प्रसाद के जो कुछ देते हैं उसे ग्रहण करो। ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्य भजन के जो रहस्य हैं, उनकी जो अनुभूतियां हैं, उसको सुने और पूछें। भजन में हमारा क्या अनर्थ है ये वैष्णव से पूछे और वो अपनी अनुभूतियों को जो कहेंगे उसे श्रवण करें। भूंगते भोजते उनका प्रसाद उच्छिष्ट ग्रहण करते हैं और उनको भोजयते उनको प्रसाद भी देते हैं। चतुर्विधासी भगवत प्रसादो स्वदन्न तृप्तान हरिभक्त संघान तृप्ति भजत सदैव वंदे गुरु श्री। ये गुरु का कार्य है, वे प्रसाद देंगे और लेंगे भी। ये तीन चीजें भक्त पद जल और भक्त धूलि और भक्त पद जल भक्त भक्त शेष, ये तीन साधन निर्भर। इसी के बल से नारद जी भी किस प्रकार से हो गए। इसलिए सब अभिमान को छोड़कर वैष्णव की धूलि से अभिषिक्त होना चाहिए उनके।